पृष्ठ संख्या एक, नाटक और रंगमंच। इधर 15 वर्षों से हिंदी नाटक और नाटककार की दृष्टि लेखन और नाटकीय समझ में बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य मोड़ आया है। अक्सर सहयोग, सह अस्तित्व, सामंजस्य, नाटक और विचार, नाटककार और रंगमंच, नाटककार और निर्देशक, नाटककार के अधिकार के सवाल टिप्पणियों में, लेखों में उठते रहे हैं, जिनसे हिंदी नाटक जगत में सक्रिय आंदोलन का परिचय तो मिलता ही है। एक लंबे शून्य और जड़ स्थिति के बाद सारे भ्रमों को तोड़कर नाटक की मौलिकता भी प्रतिष्ठित होती है। आज से कुछ वर्ष पहले मोहन राकेश व डॉट कारंत और अनेक व्यक्तियों ने नाटक में सहयोग, सह अस्तित्व और सामंजस्य की बात कही थी और साहित्यिक विधा के रूप में उसके सही और पूर्ण रूप को समझने समझाने का प्रयत्न किया था। इधर 15 वर्षों से नाटककार ने स्वयं नाटक को पहचाना ही नहीं है, बल्कि नाट्य समीक्षा के प्रतिमान बदलने की भरपूर कोशिश की है। प्रायः कहा जाता है, और सही भी है, कि हिंदी नाटक अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि सबसे पुरानी विधा होते हुए भी जीवन और विचार से, नवीनता और प्रयोग से, अनेक समस्याओं से उसका संबंध उतना नहीं जुड़ पाया या उसमें इतने क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए जितने कहानी में या कविता में। इसका मुख्य कारण है नाटक और शेष विधाओं के माध्यमों का प्रगतिगत भेद। नाटक कोई पाठ्य पुस्तक मात्र नहीं है, जैसे कि कहानी और उपन्यास, और उसकी तरह नाटक का सीधा संबंध पाठकों से होता है, बल्कि नाटक एक जीवंत अनुभव है जो अपनी जीवंतता रंगमंच पर ही प्राप्त करता है। नाटक की सही कसौटी रंगमंच ही है। रंगमंच को उसका निकष मानकर ही उसकी निजी सत्ता की खोज संभव है। नाट्य कृति और रंगमंच एक दूसरे के कार्य और कारण हैं, दूसरे स्तर पर एक दूसरे के पूरक और यहाँ तक कि एक दूसरे के पर्याय भी। निस्संदेह रंगमंच की आत्मा नाटकीयता है, तो नाटक की आत्मा रंगमंचीयता है। बहुत पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक की इस मौलिकता और रंगमंच से उसके संबंध को स्थापित करते हुए ही कहा था कि नाटक का शरीर है वाचिक अभिनय, क्योंकि आंगिक और सात्विक अभिनय तथा नेपथ्य आदि सब उसको ही व्यंजित करते हैं। भरत मुनि ने जहाँ नाट्य शास्त्र द्वारा नाटक को नियमबद्ध किया था, वहाँ इसकी संपूर्ण रचना प्रक्रिया पर सहयोगी कला रूप और रंगमंचीय कला रूप पर भी विचार किया था, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय नाटक और उसके रंगमंच की परंपरा एक लंबा फासला तय कर चुकी थी, जिसे भरत मुनि ने शास्त्रीय रूप प्रदान किया। संदर्भ एक, रंगमंच और नाटक की भूमिका, लक्ष्मी नारायण लाल। पृष्ठ संख्या 15। पृष्ठ संख्या 2, उन्होंने नाटक में मनोविनोद को, लोक रंजन को भी आवश्यक तत्व माना और उसके महत्व को, व्यापकता को, समस्त कलाओं में उसकी रम्यता को भी स्थापित किया। नाटक के प्रस्तुतिकरण, रंगमंच, उसके स्वरूप, उसके भेद, उसके विविध उपकरण, प्रेक्षागृह इत्यादि पर इतना विस्तृत विवेचन नाट्य शास्त्र में मिल जाता है कि भारतवर्ष में नाट्य कला के परिष्कृत रूप के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता। नाटक के प्रस्तुतिकरण में भरत ब्रैकेट में नाट्य संस्था का आधारभूत संचालक ब्रैकेट क्लोज, सूत्रधार, नट, संगीत निर्देशक, वेशभूषा, साज सज्जा के बनाने वाले, माला, मुकुट और आभरण बनाने वाले, पर्दा बनाने वाले, रंजक आदि के सामूहिक सहयोग और उद्योग पर नाटक की सफलता असफलता की बात कहकर उन्होंने नाट्यविधा को स्पष्ट किया है, जो आज भी अनिवार्य रूप से आधुनिक प्रतीत होता है। नाटक एक त्रिकोण से आबद्ध है। नाटककार, निर्देशक ब्रैकेट में, सूत्रधार ब्रैकेट क्लोज और दर्शक, लेकिन अभिनेता और अन्य सारा समूह भी उसका अनिवार्य अंग है। इसीलिए सारी नाटक प्रक्रिया इनके निरंतर तारतम्य, सहयोग, सामंजस्य से ही संभव है, जो प्रत्यक्षतः रंगमंच पर दृष्टिगोचर होता है। यही यह सत्य भी सामने आ जाता है कि जिस देश का, जिस समय का रंगमंच जितना विकसित होगा, यहाँ तक कि जिस प्रकार के रंगमंच की व्यवस्था होगी, नाट्य रचना भी उसी प्रकार की रंगशालाओं के अनुरूप होगी। उदाहरण के लिए, कालिदास और शेक्सपियर के सामने अभिनय और निर्देशन की सशक्त परंपरा थी। रंगशाला का एक सुव्यवस्थित निश्चित रूप भी था और नाटककार भी रंग शिल्प अपने युग की अभिनय शैली आदि से, यानी अपने माध्यम से पूरी तरह परिचित थे। अपने समय की सारी संभावनाओं का उपयोग उन्होंने अपने नाटकों में किया है। सभी संस्कृत नाटकों से तत्कालीन रंगशालाओं, रंग योजना, अभिनय शैली, मुद्रा भंगिमाओं और शिल्प को अच्छी तरह पहचाना जा सकता है। इसीलिए उस समय के नाटकों को पूरी तरह समझने, अनुभव करने के लिए उनके समय के रंगमंच, रंगशालाओं आदि को जानना जरूरी होगा। यह अलग बात है कि आज भी हम कालिदास और शेक्सपियर के नाटकों में नई रंग संभावनाएं खोज कर भिन्न दृष्टि से उनके नए प्रयोग कर लें। इंग्लैंड में आज भी शेक्सपियर के नाटक उतने ही लोकप्रिय हैं, क्योंकि आधुनिक रंगमंच पर उनके एक ही नाटक पर भिन्न भिन्न प्रयोग करके वाद विवाद उठाए जाते हैं, जो नाटक को विविध दृष्टियों से समझने में सहायता भी देते हैं। रंगमंचीय दृष्टि रंग शिल्प और अभिनय की अनेक संभावनाओं को प्रकाशित भी करते हैं। यही नहीं, दर्शकों में वैचारिक सक्रियता, उत्तेजना, उत्साह भी पैदा करते हैं और पुरानी से पुरानी कृति नई से नई लगती चली जाती है। हिंदी नाटक के साथ यह स्थिति नहीं रही, बल्कि नाटक और रंगमंच के बीच बड़ी गहरी खाई वर्षों तक बनी रही। चूंकि हिंदी रंगमंच अविकसित रहा, बल्कि वर्षों तक अस्तित्वहीन रहा, इसीलिए हिंदी नाटक कई भारतीय भाषाओं, बंगला, मराठी के नाटकों से पीछे रह गया। बंगाल और महाराष्ट्र में रंगमंच की लंबी विकसित परंपरा मिल जाती है, इसीलिए उनके नाटकों में नाट्य शिल्प और रंग शिल्प के नाट्यानुभव और रंगानुभव के स्तर उपलब्ध होते हैं।